Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Mahan Atma, badi daya karte hain, kyunki ahetuk karuna kar rahe hain. Teen vardaan jo dene ki baat ki thi na, वो तो केवल लेन देन था, लेन देन मात्र. तीन रात्रि तक बालक द्वार पर भूखा प्यासा रहा है, उसका जो पाप लगा है, उसका जो ऋण चढ़ा है अतिथि सत्कार नहीं होने पर, उस ऋण से उऋण होने के लिए तीन वरदान यमराज दे रहे हैं. तो ये तो समझो कि उन्होंने ऋण डाल दिए, इसलिए ऋण को उतारा जा रहा है. यहां कोई बहुत बड़ी बात नहीं, यहां कोई महात्मापना नहीं है. ये तो लेन देन है, जितना तुमने दिया उतना. किसी दुकानदार के पास जाते हैं, दूध वाले से दूध लेते हैं, और जितना पैसे आपने दिए उतने पैसे का दूध दे दिया, तो उसमें क्या है, तो सौदा है. लेकिन इसके साथ में कोई अपनी ओर से गिफ्ट में और भी दे कि आप हमेशा आते हैं, बहुत अच्छे ग्राहक हैं, बरसों के पुराने ग्राहक हैं, चलो आपको इसके साथ में कोई विशेष गिफ्ट दी जा रही है, तो वो उसकी कुछ महिमा कही जा सकती है. ऐसे ही यमराज यहां पर देखते हैं कि ये बालक तो बहुत कुशल है. जो मैंने इसको समझाया, एक एक को ज्यों का त्यों समझा है, इसलिए प्रसन्न होकर के कहने लगे, बहुत खुश हो गए प्रियमान. अत्यंत प्रसन्नता को प्राप्त होते हुए महात्मा यम नचिकेता को कहने लगे कि मैं अपनी ओर से एक वरदान तुझे और देता हूं, यह गिफ्ट में दे रहा हूं, अपनी ओर से वरदान दे रहा हूं. तब एव नामना भविता अयम अग्नि ही. ये जो अग्नि है, जिस अग्नि के संबंध में तुमने प्रश्न किया, ये जो साधक की साधन भूता है स्वर्ग को दिलाने वाली, ये अग्नि नचिकेता तव नामना भविता, तुम्हारे ही नाम से होगी. ये जो अग्नि है इसको नचिकेत अग्नि के नाम से कहा जाएगा. तुम्हारा नाम नचिकेता है ना, इसलिए तुम्हारे नाम से ही इस अग्नि को कहा जाएगा नचिकेत अग्नि. ये तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी, माने इस अग्नि का तुम्हारा संबंध हो गया, तो नाचिकेत कहते ही लोग समझेंगे ये अग्नि को कहा जा रहा है. और अग्नि को कह नाचिकेत शब्द से कहते याद आएगा कि उस नचिकेता को याद दिलाया जा रहा है. दोनों का समान अर्थ होगा, इसलिए ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगी. कोई विशेष चीज होगी ती है, तो स्थान उसकी व्यक्ति के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है. किसी व्यक्ति के नाम से ग्राम का नाम रख दिया जाता है, कौन सा ग्राम, फलाना ग्राम. आदमी के नाम से, इंसान के नाम से उस ग्राम का नाम रख दिया जाता है. कहते हैं भाई तुम यहां के बड़े व्यक्ति हो, इसलिए इस ग्राम का नाम तुम्हारे नाम से रखा जाएगा. जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, कैसे हुआ ये, राव जोधा ने बसा दिया नगर को, तो कहा कि ये जोधपुर, इस पुर के साथ में ही उसका नाम प्रसिद्ध हो गया. उदय सिंह ने बसाया तो उसके नाम से उदयपुर हो गया, माने ये नगर तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा. राव जोधा के नाम से जोधपुर, राव और उदय सिंह के नाम से उदयपुर. इसी प्रकार से ये जो अग्नि है, इसको भी कहा कि नचिकेता, ये तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी, इसलिए इसको नचिकेत अग्नि कहेंगे, जिस अग्नि के संबंध में तुमने प्रश्न किया. लेकिन इतने प्रसन्न हो गए महाराज, इतने प्रसन्न हो गए, कहा कि मैं एक वर और दे रहा हूं, एक नहीं वर में वर और दे दिया. वर के अंदर और भी वर, जैसे कोई चीज किसी को दी जाती है, उसको पैकिंग करके अंदर में और कोई छुपा दिया जाता है. मानो वरदान के अंदर और वरदान देते हैं. कहते हैं ये अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, ये तो दिया ही, लेकिन इसके अंदर अंदर एक मैं तुम्हें एक एक श्रृंखला देता हूं. श्रृंखला बोलते हैं माला को, और माला केवल पुष्प वाली माला, पुष्प हार नहीं, श्रृंखला का अर्थ रत्न जड़ित माला. बहुमूल्य कीमती जो रत्न जड़ित माला होती है, कहा कि ये रत्न जड़ित माला मैं तुम्हें दे रहा हूं, इसको स्वीकार करो, विशेष चीज. और इसके साथ साथ में भाष्यकार लिखते हैं कि हो सकता है कोई रत्न जड़ित विशेष माला उसको इनाम दी हो याददाश्त के लिए. कभी कभी जब व्यक्ति बिछुड़ते हैं और किसी पर बहुत प्रेम हो जाता, अरे किसी होटल आदि में ठहरते हैं और कर्मचारी बहुत सेवा करता, जाता हुआ व्यक्ति कोई बढ़िया चीज उसको दे जाता, बेटा याद रखेगा ले ले, मानो ऐसी कोई माला दी हो. लेकिन भाष्यकार कहते हैं इतनी माला ही नहीं, अथवा इसका दूसरा अर्थ होता है, अकुत्सित गताम कर्म गतिम, ऐसी माला दिया, ऐसी कर्म गति प्रदान की। कर्म जो गति होती माला में एक के बाद एक मणका होता है, ये माला आप देख रहे हैं, एक मणके के बाद मणका, मणके के बाद मणका, मणके के बाद मणका। इस माला की समाप्ति कहां पर आती है? जहां पर सुमेरु आ जाता है, यहां पर पूर्णता हो जाती है। आप माला जपने वाले जानते हैं कि सुमेरु जब आ जाता है तो सुमेरु को लांग नहीं सकते हैं, कायदा नहीं है, बल्कि वहां से वापस अंगुली को घुमा लेना चाहिए। और जब चलते हुए सुमेरु के पास में आते हैं इधर से भी, तो जहां सुमेरु पर पहुंच के फिर वहां से वापस लौट जाइए, ये लांगने की चीज नहीं है। अब देखिए श्रृंखला है, एक के बाद एक क्रमिक यह गति हो रही, एक दाने को पार किया, दूसरे दाने पर, तीसरे दाने पर। पूर्णता कहां आएगी? जहां सुमेरु के पास पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कर्म गति का वर्णन है। मनुष्य जीवन से मानो यहां पर अग्नि विद्या से उपासना करने वाला, सत्कर्म करने वाले साधक को जो गति प्राप्त होगी, कहां गति प्राप्त होगी? अब उसको अधिक गति तो होने का प्रश्न ही नहीं है, ऊर्ध्व गति ही प्राप्त होनी है। लेकिन ऊर्ध्व गति में भी इतने सारे मणके आने वाले हैं, वो पितृ लोक जाएगा, वो चंद्र लोक जाएगा, वो आदित्य लोक जाएगा, वायु लोक जाएगा, इंद्र लोक जाएगा, प्रजापति लोक, कितने लोक आते हैं। 14 लोकों का वर्णन तो हमारे शास्त्रों में आता ही है, परंतु लोकों के अंतर्गत और कितने लोक, अनंत लोक है। और वो ऊर्ध्व गति को पाने वाला जो जीव है, उपासक है, वो जब आगे बढ़ेगा तो मानो माला का एक एक मणका आ रहा है और उसको पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक एक लोक आता है, कालाभिमानी देवता आ गए, दिन का अभिमानी देवता आ गए, कहीं शुक्ल पक्ष के अभिमानी देवता आ रहे हैं, तो कहीं उत्तरायण के 6 महीनों के अभिमानी देवता आ रहे हैं, कहीं संवत्सर के अभिमानी देवता आ रहे हैं, तो कहीं वायु देवता आ रहे हैं, कहीं चंद्रमा देवता आ रहे हैं, कहीं आदित्य देवता आ रहे हैं, कहीं इंद्र वरुण देवता आ रहे हैं। ये सारे देवता, उनका लोक आता है, उन सब को पार करता गया। कैसी गति प्राप्त हो रही है, लेकिन आखिर में ऐसी गति दिया अकुत्सिताम, वो गति मैं तुम्हें दे रहा हूं जो कुत्सित नहीं है, निंदनीय नहीं है, जो हेय नहीं है, वो गति माने ब्रह्मलोक की प्राप्ति। बाकी जितने भी अन्य लोकों की प्राप्ति होगी उसके लिए बोलते हैं ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्ते लोकम विशंति। स्वर्ग के भिन्न भिन्न जुदा जुदा लोक हैं और इन लोकों को भोग करके जीव फिर वापस लौट करके आएगा, तो वो तो कुत्सित गति होगी, निंदनीय गति होगी। राम राम, यहां इतनी उपासना किया, इतना कर्म किया, इतनी साधना की, ऊर्ध्व लोक को प्राप्त किया, परंतु फिर भी वहां से नीचे धकेल दिए गए, वापस लौटा दिए गए। और वापस आने की प्रक्रिया तो आप सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई व्यक्ति देखिए हमेशा फुटपाथ पर सोने वाला व्यक्ति को अभाव का इतना दुख नहीं होगा, वो एक दिन भूखा भी रह जाए, या झोपड़ फुटपाथ पर सोने वाले को एक झोपड़ा भी मिल जाता है तो उसको बड़ी शांति मिलती है, वो समझता है कि मैं कम से कम रोड से एक झोपड़े में आ गया हूं। लेकिन 5 स्टार में रहने वाला यदि झोपड़े में चला जाए तो सुखी होगा, उसको प्रसन्नता होगी? कतई प्रसन्न नहीं हो सकता है। अब देखिए एक तो जीव नीचे नरक में ही पड़ा हुआ है और दूसरा यहां से उस 5 स्टार के समान ऊर्ध्व लोक को, स्वर्ग लोक का भोग को प्राप्त किया और फिर वहां से कहेंगे भैया वापस जहां से आए जाओ, खाली करो लोक, खाली करो, कितना कष्ट होगा उस जीव को, यह सुख छूटेगा। और जब इतना कष्ट होता सुनता है कि यह वापस मृत्यु लोक में लौटना है, पंचाग्नि विद्या के प्रसंग में बताया, उस जीव को इतना दुख, इतनी वेदना होती है, वो दुख के मारे ही पिघल जाता है और पिघल करके आकाशमय हो जाता है। आकाश के बाद में फिर वो बादलों के साथ में, जैसे वो पानी के जो कण होते हैं, जल कण, परमाणु, जल परमाणु कण, उनके जैसा हो जाता, मानी उनके साथ में लगता है और फिर बरसने के लिए, नीचे गिरने के लिए वो बादलों में लग जाता है। और बादल भी कौन से, जिसको अभ्र बोलते हैं, सफेद सफेद बादल। उसके बाद में मेघों के साथ में आता, जो काले काले बादल बन जाते हैं, घने बादल बरसने की स्थिति में, और मेघों के साथ लग करके प्रवर्षति, जुदा जुदा बूंदें जो गिरती है उनके साथ में नीचे गिर पड़ता है। अब नीचे पता नहीं कहां गिरेगा, समुद्र में गिरेगा, पहाड़ में गिरेगा, पेड़ पर गिरेगा, किसी प्राणी के शरीर में गिरेगा, नाली में कीचड़ में गिरेगा, कहीं भी गिर सकता है। और उस जल का जिससे संबंध होगा, किसी पेड़ पौधे के साथ भी संबंध हो सकता है, किसी पशु के साथ भी संबंध हो सकता है, किसी मनुष्य के साथ भी संबंध हो सकता है, सांप के मुंह में भी गिरा हुआ पानी हो सकता है। और उस जीव की फिर उनके साथ में गति होती है, जिन जिन शरीरों को प्राप्त करता है वहां पर भी भटकता रहता है, जब तक अग्नि प्रारब्ध न बने वो कितना कष्ट उठाता है। इसलिए स्वर्ग गति भी वास्तव में कुत्सित गति ही है, वहां से भी निंदनीय गति ही लौट करके आना पड़ता है। इसलिए यमराज कहने लगे, देखो अग्नि विद्या से भी और श्रेष्ठ जो फल है मैं तुम्हें दे रहा हूं, अकुत्सित गति ब्रह्मलोक की प्राप्ति। क्योंकि ब्रह्मलोक को जब व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो वहां भी दो तरह का व्यक्ति जाता है, एक वासना वाला जाता है और एक केवल ब्रह्मलोक की भोग की वासना वाला, और दूसरा जो होता है वो केवल उपासक जाता है, सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला। सगुण ब्रह्म की उपासना करने वाला फिर वापस लौट करके संसार में नहीं आता है, लेकिन कर्म के द्वारा जो लोक को प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक को भी, तो उसको भी प्राप्त करके वापस लौट करके आ जाना पड़ता है। इसलिए भगवद गीता में कहा, आ ब्रह्म भुवनात् लोका पुनरावर्तिन, ब्रह्म लोक तक के ऐसे भोग हैं, लोक हैं, जहां से वापस लौट करके आना पड़ता है। तो उस श्रेष्ठ ब्रह्म लोक को प्राप्त किया, केवल अहंग्रह उपासना करने वाले को ही ब्रह्म लोक प्राप्त होने पर मुक्ति मिलेगी, बाकी कर्म करके ब्रह्म लोक को प्राप्त करने वाले को वहां मुक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है, उसको कल्पांतर में वापस लौट करके आना पड़ेगा। यही कारण है कि यहां पर महाराज यम इसको कहते हैं कि ये जो श्रृंखला है बड़ी महत्वपूर्ण है, ये अकुत्सित गति है मैं तुम्हें दे रहा हूं, लेकिन जो आगे चल करके आप देखना, जब नचिकेता सब के सब को नकार देता है और देखा कि ये बालक परीक्षा में पास हुआ है, तब उसने सबको नकार दिया, तब वहां पर जाकर के कहा कि ये जो अच्छो अच्छो को लुभा देने वाली गति होती है उसको भी तुमने कुत्सित निंदनीय समझ करके त्याग कर दिया है, नचिकेता तुम महान हो। परंतु यमराज अपनी प्रसन्नता के कारण कहते हैं, अरे तुम ब्रह्मलोक को भी चाहते हो या न चाहो तो भी मैं अपनी ओर से गिफ्ट में तुम्हें ब्रह्मलोक देता हूं, क्योंकि तुम बड़े ही बुद्धिमान हो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये माला माने अकुत्सित गति, ब्रह्मलोक को प्राप्त करवाने वाली जो गति है वो भी तुम्हें प्रदान करता हूं, और ये अग्नि तुम्हारे नाम से ही प्रसिद्ध होगा, ये वरदान मैं अपनी ओर से ही तुम्हें दे रहा हूं, इस वरदान को अपने मांगने वाले तीन वरदान में मत गिनना। ये जो साधना ये उपासना की जाती है, इस अग्नि से जो मैंने तुमको दिया है उसका एक थोड़ा सा वर्णन और अगले मंत्र में करके इसको पूर्ण करने जाएंगे। बहुत सुंदर बात यहां पर बताने जा रहे हैं कि ये जो अग्नि है, इस अग्नि की उपासना करने वाला भी अत्यंतम शांति में यती, अरे बड़ी शांति को प्राप्त करता, अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। लेकिन साधक कैसा होना चाहिए, कैसी उपासना वाला होना चाहिए, उसका यहां पर वर्णन कर रहे हैं। तृणाचिकेत त्रिभिरेत्य संधेम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्मजज्ञम देवमिड्यम विदित्वा निश्चाय माम शांतिमत्यंतम हेति। बड़ी सुंदर बात बता रहे। देखो ये अग्नि है ना, जड़ अग्नि नहीं है, ये चेतन अग्नि है, ये ब्रह्मज अग्नि है और ब्रह्मजज्ञम अग्नि है, ऐसी अद्भुत अग्नि है। क्योंकि परमात्मा ब्रह्म है, उस ब्रह्म ने अपने संकल्प से हिरण्यगर्भ को प्राप्त किया और हिरण्यगर्भ से ही प्रकट ये प्रथम अग्नि है, सूर्य रूपा अग्नि है, ये जड़ नहीं है, ये चेतन है। क्योंकि हिरण्यगर्भ से उस अपर ब्रह्म से प्रकट हुई है, ब्रह्मज है और ये ज्ञेय भी है, ये जाननी वाली है। ये भौतिक अग्नि जैसे देखते हो उसे जड़ अग्नि नहीं है, जैसे मैंने कहा कि शरीर है पर शरीर के भीतर में देखने वाला कोई चेतन तत्व है, ऐसे ही इस अग्नि का जो अभिमानी है यह है ब्रह्मजज्ञ, प्रथम शरीरी, प्रथम अग्नि जो सबका अभिमानी है, जैसे 3.5 हाथ का जो ये शरीर होता है, इस शरीर को मैं करने वाला एक जीव होता है, इस शरीर को मैं करने वाला दूसरा जीव होगा, इस शरीर को मैं करने वाला दूसरा जीव होगा, जितना शरीर है उसको मैं बोलने वाला एक जीव होगा। परंतु इस एक जीव के अंदर कितने जीव पड़े हुए हैं आपने सोचा? 3.5 हाथ का व्यक्ति का 50-60-70-100 किलो का वजन वाला शरीर होता है, उसका अभिमानी तो एक ही जीव होगा, परंतु इस शरीर के भीतर असंख्य जीव होते हैं, कृमि कीट आदि, रक्त जीवाणु आदि, असंख्य जीव होते हैं जो शरीर के भीतर पड़े हुए हैं, लेकिन वो सारे के सारे इस मैं में समाये हुए हैं, जो इस शरीर को कहने वाला मैं कहने वाला जीव है उसके अंदर समा गए हैं सबके सब। उनका अपना अपना मैं होगा वो अलग बात है, लेकिन वो सारे मैं संपूर्ण जीवाणु शरीर के भीतर जो पड़े हुए हैं उसको ये जीव कहता है, ये मैं हूं, मैं के अंदर समाये हुए हैं। ऐसे ये समष्टि जो अग्नि है, समष्टि अग्नि के भीतर सारे लोक विद्यमान है, स्थावर जंगम प्राणी शरीर विद्यमान है, उनके भीतर प्रकट होने वाली चेतना विद्यमान है, ये विराट जो शरीर है अग्नि, ये सबको क्या बोलता है, ये मैं हूं। उस मैं के अंदर जो समाये हुए हैं, ये अग्नि महान अग्नि है, जो अग्नि सबको अपने अंदर समाये हुए हैं, जैसे मानव शरीर के भीतर के जीवाणु कहे, ये जीव महान जीव है जो हम लाखों कीड़ों का पेट भर रहा है, ये खाएगा तो उनका पेट भरेगा, ये पिएगा तो उनको पानी मिलेगा, और यदि अपने आप को आग में डाल देगा तो उनको भी स्वाह होना पड़ेगा, इसके होने से उनका होना, इसके नहीं होने से उनका नहीं होना। ऐसे जो समष्टि भूत अग्नि है, इस समष्टि अग्नि के भीतर सारे के सारे समाये हुए हैं, इसलिए ये जो समष्टि अग्नि है सबकी आधारभूता, ये अग्नि है देवम इड्याम, ये देव है, ये ब्रह्मज है, ब्रह्म से प्रथम प्रकट, ये ज्ञान रूप है, ज्योतनाथ ये प्रकाश रूप है, ये इड्य माने स्तुति करने योग्य है। इस अग्नि को जान करके अत्यंतम शांति में येति, जान करके निश्चय करके साधक अत्यंत शांति को माने, ये समष्टि अग्नि मैं हूं, ऐसी उपासना करके शांति को प्राप्त होता है। पर उपासना करने वाला कैसा, हम करना चाहें तो कोई शर्त है क्या? नचिकेता ही कर सकता है, केवल नचिकेता अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने लिए तो इसका उपयोग करेगा ही नहीं, वो तो इसका भी त्याग करेगा, ये लोग के लिए मांगा है जो स्वर्ग लोक की इच्छा करते हैं। तो कैसा होता वो व्यक्ति, कहा त्रिनाचिकेत, 3 बार इस नाचिकेत अग्नि का चयन करने वाला, 3 बार एक वचन, द्विवचन, और जब 3 हो जाते तो बहुवचन से कहा जाता है, माने जिसने अनेक बार इस अग्नि विद्या का चयन किया, अथवा यू समझो कि अनेक बार मानी बार बार ऐसी उपासना की, ऐसा चिंतन किया है कि ये समष्टि अग्नि रूप है, मैं हूं, उस मैं को व्यष्टि को समष्टि के साथ विलय किया है, अनेक बार जो चिंतन किया ऐसा साधक, ये चिंतन की विधि उसको कहां से कैसे प्राप्त होगी? तो कहा कि देखिए, बिना गुरु के, बिना मार्ग दिखाने वाले के उपासना समझ में नहीं आएगी। व्यक्ति उपासक संस्कारित होना चाहिए, इतना विशुद्ध होना चाहिए और परंपरा का उसको बोध होना चाहिए। तो ये परंपरा का ज्ञान कहां से प्राप्त होगा? तो कहा त्रिभिरेत्य संधिम, 3ों से संधि प्राप्त करो, 3ों का संग प्राप्त करो, और 3ों के संग से प्राप्त किया हुआ जो साधक है वो उपासना कर पाएगा। ये 3 कौन है? ये समझ लो 3 गुरु है। पहली गुरु तो मां होती है, दूसरे गुरु पिता होते हैं, और तीसरे आचार्य जिनसे विद्या प्राप्त की जाती है। 3ों के द्वारा संस्कारित हुआ जो उपासक है, मातृभक्त, पितृभक्त और गुरु भक्त, और उनसे संबंध जोड़ करके, उनसे ज्ञान प्राप्त करके, उनसे अपनत्व लेकर के, और जो इस विद्या को प्राप्त करते हैं, त्रिकर्मकृत तर्ति जन्म मृत्यु हो, 3ों से शिक्षित हो करके, मां से शिक्षित हुआ, पिता से शिक्षित हुआ और गुरु से शिक्षित हुआ, 3ों से शिक्षित होकर के त्रिकर्मकृत 3 कर्म कर रहा है। क्या कर्म कर रहा है? ये 3 कर्म करने वाला है। एक तो अग्नि विद्या का ज्ञान, एक अग्नि विद्या की उपासना पूजा जिसको बोलते हैं, ज्ञान उसकी पूजा और उसका ध्यान चिंतन जानना, फिर उसका ध्यान और फिर उसका कर्म, तीनों ही करने वाला, तीन कर्म करने वाला। अथवा भाष्यकार भगवान लिखते हैं, जिसने वेद के द्वारा, जिसने स्मृति के द्वारा और जिसने आचार के द्वारा, बाह्य व्यवहार के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ये जो कर्म करने वाला साधक है, तरति जन्म मृत्यु हो, जन्म और मृत्यु को पार कर जाता है, माने उसी को ये अनंत लोकों के आधारभूता अग्नि स्वर्ग लोक या ब्रह्म लोक को प्राप्त करवा देती है। ये इसका फल यहां पर बताया गया। त्रिनाचिकेत त्रयमेतद् विदित्वा यम यमं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम् स मृत्युपाशान पुरुत प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्ग लोके। जो शब्द नचिकेता ने कहे थे वही शब्द यहां पर यमराज दोहरा रहे। ऐसी उपासना करने वाला ये जो त्रिनाचिकेत अग्नि है, इसके त्रय को जान करके, माने माता पिता और गुरु से उपदिष्ट होकर के, श्रुति स्मृति और पुराण से अनुशिष्ट होकर के जो विद्वान इस अग्नि का त्रयन करता है, वो मृत्यु के पास से मुक्त होकर के और शोक को छोड़ करके स्वर्ग लोक में आनंद ही आनंद को प्राप्त करता है। ये इसका फल बताया और इसके बाद कहने लगे, अच्छा ये वरदान भी मैंने तुमको दे दिया है, अब नचिकेता तुम तीसरा वरदान मांग लो। तीसरा दे तो दिया, लेकिन ये जो तीसरा वरदान है ये तो अपनी प्रसन्नता है कि अग्नि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। ये माला ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ये तो उनकी प्रसन्नता का फल है। अधिकार पूर्वक जो तीसरा वरदान मांगना था, वो तो सज्जनों इतना महत्वपूर्ण वरदान है, इतना महत्वपूर्ण वरदान जो नचिकेता अपने लिए मांग रहा है। पहला वरदान पिता के लिए मांगा, पितृ परितोष। दूसरा वरदान लोक कल्याण के लिए मांगा, समाज कल्याण के लिए मांगा कि संसार के लोग सुखी कैसे हो। मानी माता पिता गुरु वेद स्मृति पुराण इनसे अनुशिक्षित होकर के व्यक्ति अपना सुखी जीवन जी सकता है, इसलिए ये विद्या मांगी समाज के लिए। परंतु तीसरा वरदान जो मांगेगा वो अपने लिए मांगेगा, अपने हित की कामना। जब तक व्यक्ति ऋण त्रय से मुक्त नहीं हो जाता, वो कभी अपना कल्याण नहीं कर सकता है। यही बात मैंने आपको कहा था, पितृ ऋण उतारने की बात इन्होंने की, पिता का परितोष मांग करके, लोक कल्याण की भावना चाह करके, क्योंकि वेद विधि से ही लोक कल्याण किया जा सकता है। ऋषि ऋण उतारने की बात की है, और तीसरा जो देव ऋण होता है, एकमात्र परमेश्वर का ऋण। परमेश्वर का ऋण कैसे उतरे? परमेश्वर का ऋण उतरेगा जब यह जीव परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाए। किसी पिता का भूला भटका बालक कहीं अनाथ होकर के भटक रहा है, दुखी होकर के भटक रहा है, और पिता चाहते हैं कि मेरा बेटा वापस मुझे प्राप्त होकर के सुखी हो जाए। पिता को प्रसन्नता तभी होगी जब उसका भटका हुआ बालक उसको वापस प्राप्त हो जाए। ऐसे परम पिता परमेश्वर को भी तभी खुशी होगी जब उसके भटके हुए जीव वापस उस परमेश्वर को ही प्राप्त हो जाएंगे, तब वो परम पिता परमेश्वर को अत्यंत प्रसन्नता होगी। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति में ही देव ऋण से ऋणता प्राप्त होती है, जिससे संबंधित वरदान नचिकेता मांगने की तैयारी कर रहा है। पर वो कह रहा है कि आज नहीं मांगूंगा, कल मांगूंगा, सोचूंगा किस तरह से मांगना है, क्या मांगना है। बड़ा सुंदर वरदान मांगा जाएगा और वो महत्वपूर्ण है। उसको सुनने के लिए कल ठीक समय पर आप लोग आ सके, जरूर पधारिए। इन शब्दों के ओम शांति ही, शांति ही, शांति।
ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।